समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। रेणु कटारिया के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में और इस अंक में हम आपके लिए वो ढेर सारी खबरें लेकर आए हैं जो आज आपका दिन बना देंगी। कुछ खबरें जुड़ी होंगी लोकसभा चुनावों से, कुछ खबरें बहुत इंटरेस्टिंग है, और हां, कार्यक्रम के आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसे कवि की जिसकी कविताएं जो हैं आज भी लोगों की जुबान पर हैं, और वो कुछ यूं कहता है। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग रेणु कटारिया, खूबसूरत कविता सुनते हैं।
पुछ देओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़िया नीरां दा, साडा हंजदी जूने आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा।
तो रेणु, सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन काफी है या कुछ और दिया जाए?
इतना इंट्रोडक्शन काफी है और हम आई थिंक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अब अपने लास्ट सेगमेंट का। बट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आर लिसनर्स एंड हेलो नवीन, एंड लेट अस बिगिन विद आवर प्रोग्राम सो दैट वी रीच द एंड वेरी सून। एंड सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
बिल्कुल, सबसे पहले लोकसभा चुनाव की कुछ खबरें हैं वो आपके साथ बांटते हैं। चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट और 7वें और अंतिम चरण में मतदान होगा। इस चरण महीने की 14 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। इस चरण के लिए मतदान 1 जून को होगा।
In Manipur, the governor, Sushri Anusuya Uke, inaugurated school on wheels at a ceremony held in Imphal. The initiative, which is being implemented by Vidya Bharati Shiksha Vikas Samiti Manipur, aims to reach out to the students in the relief camps in the state. The school bus is equipped with a library, computers and sports items with a teacher and visits relief camps in different places in the state.
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार कल समाप्त हो गया। इस चरण में लोकसभा की 9 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव सामग्री आज वितरित की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान कर्मियों और मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं।
In Chhattisgarh, 35 Maoists have surrendered in Dantewada district yesterday. 3 of the surrendered Maoists had reward on their head. These Maoists, influenced by the Lone Varuthu campaign being run by Dantewada police, surrendered before DIG police of Dantewada range, Kamalochan Kashyap, and senior officers of CRPF and police. All these Maoists were said to be active in Bhairamgarh and Katikalyan area committee of Maoist organization. These Maoists are accused of being involved in many Naxalite incidents, including road blocking.
चुनाव और रैलियों से जुड़ी कुछ और खबरें हैं, नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कनिशी और नवरंगपुर जिले की चिकली मैदान में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा और ओडिशा विधानसभा के लिए 13 मई से 4 चरणों में एक साथ होने जा रहे चुनावों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली ओडिशा यात्रा है। वहीं कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने जलेश्वर विधानसभा सीट से देवी प्रसन्ना चंद के स्थान पर सुदर्शन दास को टिकट दिया है। अक्षय आचार्य नीलगिरी से, आठगढ़ से सुदर्शन साहू और आठ मल्लिक से हिमांशु चौलिया पार्टी के उम्मीदवार हैं।
In Kerala, the Coast Guard has detained an Iranian boat about 40 nautical miles off Kozhikode coast yesterday. Sources said 6 Indian fishermen who had gone for fishing in the Iranian waters are in the boat. They had escaped from Iran following a wage dispute. The boat is now being towed towards Kochi. ICGS Anubhav, an ALH helicopter and a fast attack boat were involved in the operations. Further details are awaited.
भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा 13 मई से अस्थायी रूप से काफी कम कीमत पर फिर से शुरू होगी। ये सेवा भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना के पास कांके सुंथाराई यानी केकेएस को जोड़ती है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अलूरा इमाम साहिब क्षेत्र से दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री सहित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है।
The Indian Meteorological Department IMD has forecast heat wave to severe heat wave conditions over parts of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra and Karnataka today, while these conditions will also prevail over Rajasthan and Madhya Pradesh till the 9th of this month. The weather agency said that maximum temperatures will rise by about 2 degrees Celsius over parts of northwest and central India during the next 2 days. No significant change is expected over the rest of the country.
आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 236 रन बनाए, जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम सिर्फ 137 रन पर सिमट गई। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।
The Indian women's 4x400 meter relay team has qualified for Paris Olympics after finishing second in its second round heat at the World Athletics Relays at Nassau in Bahamas. The quartet of Rupal Chaudhary, M.R. Puvamma, Jyotika Sridandi and Subha Venkatesan clocked 3 minutes and 29.35 seconds to finish second behind Jamaica to book a Paris Games ticket. The Indian team had finished fifth in the first round qualifying heat yesterday with a time of 3 minutes and 29.74 seconds.
आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों से जुड़ी खबरों का। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं रेनू, और दिल्ली, मुंबई के और कोलकाता के हाल मैं बताऊंगा।
जी, थैंक यू नवीन। आई विल बिगिन विद चेन्नई मेट्रो फर्स्ट। The Greater Chennai Corporation has issued an advisory to deal with heat cramps in heat wave-like situations. The people have been advised to relieve the spasm by applying firm pressure on cramping muscles and gently massaging them. The advisory also underlined the need to stay hydrated during the summer by drinking water and juices to reduce sweating. The people have also been advised on symptoms of heat stroke and urged them to seek medical assistance immediately. More news from Chennai. The state school education department is strictly monitoring government and private schools conducting special classes during the summer holidays. This action follows a surge of complaints from parents regarding their children's well-being amid soaring summer temperatures. School Education Secretary J. Kumara Gurubaran said that all chief and district education officers have been instructed to look into schools violating the regulation. Schools have been closed since April 13th this year. Moving on to Bengaluru Metro, in Karnataka, over 2 crore 88 lakh electors in 14 constituencies will cast their votes in 28,269 polling booths on May 7th. There are 227 candidates in fray, with highest candidates in Tavangere, which has 30 candidates, and the lowest of 8 candidates are in Raichur and Bijapur constituencies. BJP and Congress are contesting on all the 14 constituencies and BSP on 9 seats. The Chief Electoral Office in Karnataka has provided standard assured minimum facilities in all the polling booths. The PWD and senior citizens will be given priority in voting. Adjacent rooms to polling booths will be made the waiting rooms. And the last news that I have is from Hyderabad Metro, Naveen. In Telangana, more than half of the electors who opted for home voting cast their vote in the state. A total 15,637 votes polled out of 23,247 votes in the home voter category across the state by last evening. Meanwhile, over 32,000 postal ballots also polled in the state. These postal and home voting will continue for 2 more days. And now moving on to you, Naveen. Let's have some news from Delhi, Mumbai and Kolkata.
सबसे पहले नजर दिल्ली की खबरों पर। दिल्ली भाजपा की ओर से कल तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली तमिल संगमम का आयोजन किया गया। इसमें नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज सहित कई प्रमुख पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। सुश्री स्वराज ने कहा कि भारत की संस्कृति में तमिलनाडु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सहप्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, द्वारिका के पार्टी नेता मुकेश सिन्हा और कादीपुर के नेता प्रवीण राणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कल भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कल हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अध्यक्ष पद संभाला। इस अवसर पर सांसद अजय माकन, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, जयप्रकाश अग्रवाल, कृष्णा तीरथ सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली में चल रहे एक अवैध कैसीनो का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फाइव स्टार होटल में चल रहे इस कैसीनो से 22 लोगों को गिरफ्तार किया। रुख करते हैं मुंबई का। भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ उनकी कथित भड़काऊ टिप्पणियों के लिए शिकायत दर्ज की है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र के मुताबिक बीजेपी की शिकायत विजय वेट्टीवार के 5 मई को दिए गए कथित भड़काऊ और भ्रामक सार्वजनिक बयानों से संबंधित है। मुंबई की अगली खबर। मुंबई की बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम वर्तमान में 3 चरणों में ऐतिहासिक बाणगंगा झील पर बहाली का काम कर रही है। 16 ऐतिहासिक दीपस्तंभ के जीर्णोद्वार के साथ साथ प्रमुख कार्यों में झील के चारों ओर पत्थर की सीढ़ियों की मरम्मत और सुधार करना, भक्ति परिक्रमा मार्ग के रूप में जाने जाने वाला एक गोलाकार सड़क है उसको विकसित करना, बाणगंगा झील की ओर जाने वाले एक लिंक की स्थापना करना और अतिक्रमण हटाना शामिल है। अगली खबर। बृहन मुंबई नगर निगम ने अपने 6 अस्पतालों में क्लीन अप मार्शल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये मार्शल अस्पतालों में पैदल रास्तों और बैठने की जगहों पर नजर रखेंगे और कूड़ा फैलाते हुए पकड़े जाने पर कर्मचारियों या मरीजों के रिश्तेदारों को दंडित करेंगे। रन फॉर वोट मैराथन ये भी हुई। पालघर में कल नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया। पालघर कलेक्टर गोविंद बोड़के सहित कई अधिकारी, कर्मचारी, बच्चे, युवा महिलाएं और विभिन्न आयु वर्ग के अन्य नागरिकों ने इस मैराथन में भाग लिया। इस अवसर पर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ जो थी वो आयोजित की गई। कोलकाता में भी लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी है। आम चुनाव के मद्देनजर कोलकाता और उपनगरों में राजनीतिक अभियान और सार्वजनिक बैठकें और आउटरीच गतिविधियां पूरी ताकत से चल रही हैं। कोलकाता और उपनगरों में चुनाव के 5वें और 7वें चरण में मतदान होगा। चिलचिलाती धूप है, तापमान बहुत है, लेकिन फिर भी गर्मी से बचते हुए प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए सुबह और शाम का फिलहाल समय चुना गया है। तो ये थी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की कुछ खास खबरें। और अब बात आज के मौसम की। हालांकि बहुत से लोग हमें अपने आप को मौसम विशेषज्ञ समझते हैं, है ना रेणु, बाहर निकलते हैं ठीक ऊपर देखा आसमान की तरफ, आज बारिश होगी, आज तापमान इतना होगा, आज गर्मी पड़ेगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम बताते हैं। मौसम विभाग कहता है कि दिल्ली में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और अधिकतम तापमान आप सोचिए, बैठ कीजिए, कितना हो सकता है, 40 नहीं 41 डिग्री, आज 41 डिग्री को टच करेगा। हालांकि शाम थोड़ी सी सुहानी रहेगी, 24 डिग्री के आसपास रहेगा। मुंबई में 33 डिग्री और 27 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। बात करें कोलकाता की तो वहां पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त कर रहा है ऐसा मौसम विभाग कहता है। तापमान 37 डिग्री और 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।
एंड नवीन, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेदर इन द साउथ इन द सदर्न सिटीज, इट इज mostly going to be cloudy. So let's begin with Chennai. Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 30 degrees Celsius and the maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light light rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and the maximum will be around 38 degrees. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 28 degrees and a maximum of 42 degrees Celsius.
रेनू, दिन की शुरुआत हुई है और दिन की शुरुआत में बहुत सी बातें जहन में आती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने जहन में रखते हुए हमें पूरे दिन में उसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन ये बातें कौन सी होती हैं? बहुत सी हैं, लेकिन इतिहास की बातें ऐसी होती हैं, अगर आप उसको जान लेना तो जब आप महफिल में बैठेंगे ना, बात करेंगे और लोगों से कहेंगे कि आज के दिन ऐसा हुआ तो आपके नंबर थोड़े से बढ़ जाएंगे।
यू विल बी ऑन द एडवांटेज।
तो चलिए, वो सभी घटनाएं आज हम याद करते हुए जो जुड़ी हुई हैं आज के दिन से।
जी बिल्कुल। बिगनिंग विद द ईयर 1529, ऑन दिस डे बाबर शाह द मुगल एम्परर डिफीटेड अफगान नवाब नसरत शाह किंग ऑफ बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ द गन एंड द घाघरा रिवर।
1840 वो आज का दिन जब दुनिया की पहली गोंद लगी डाक टिकट पेनी ब्लैक का ग्रेट ब्रिटेन में इस्तेमाल किया गया था।
In 1860, on this day, the first American Athletic Club, San Francisco Olympic Club, was formed.
1857, आज का दिन जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट को भंग किया था। रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था।
एंड इन 1904, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द अमेरिकन लंग एसोसिएशन वॉज हेल्ड ऑन 6 मई।
1944, गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया था और उनके जीवन की ये अंतिम रेल यात्रा थी।
In 1933, a trade agreement was signed between Italy and USSR on this day.
1954, लंदन के एक बगीचे में कई महीने तक दौड़ने का अभ्यास करने वाले मेडिकल छात्र रोजर बैरिस्टर ने 1 मील की दूरी को 4 मिनट के भीतर पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया था। वो आज ही का दिन था और उन्होंने ये दूरी 3 मिनट 59.9 सेकंड में पूरी की थी।
कमेंडेबल। इन 1952 ऑन दिस डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति आफ्टर द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
1976 में आज का दिन थोड़ा सा दुखद भरा था क्योंकि उत्तर पूर्वी इटली में भीषण भूकंप से कम 1000 लोगों की मौत हो गई थी और भूकंप के झटके 3 बार महसूस किए गए थे और ताकतवर भूकंप की जो तीव्रता थी वो 6.5 थी।
इन 1967 ऑन 6 मई मॉरीन विल्टन रैन द फीमेल वर्ल्ड रिकॉर्ड मैराथन एंड इन 2000 सौरव गांगुली वन द सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 1999-2000 ऑन दिस डे दैट इज 6 मई।
तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से और अब बात उन व्यक्तियों की, उन विशिष्ट व्यक्तियों की यूं कहें जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से। तो सबसे पहले बात उन व्यक्तियों की जिनकी आज जयंती है या जन्म है।
Yes, we are going to remember those first whose birth anniversaries or death anniversaries are today. So let's begin with the death anniversary. Today is the death anniversary of Henry David Thoreau, who was an American naturalist, essayist, poet and philosopher, a leading transcendentalist. He is best known for his book Walden, a reflection upon simple living in natural surroundings, and his essay Civil Disobedience, originally published as Resistance to Civil Government, an argument in favor of citizen disobedience against an unjust state. Thoreau's books, articles, essays, journals and poetry amount to more than 20 volumes. Among his lasting contributions are his writings on natural history and philosophy, in which he anticipated the methods and findings of ecology and environmental history, two sources of modern-day environmentalization. His literary style interweaves close observation of nature, personal experience, pointed rhetoric, symbolic meanings, and historical lore, while displaying a poetic sensibility, philosophical austerity, and attention to practical detail. He was also deeply interested in the idea of survival in the face of hostile elements, historical change and natural decay. At the same time, he advocated abandoning waste and illusion in order to discover life's true essential needs.
आज लांस नायक आबिद खान की जयंती है। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में पाली नगर के मोहल्ला काजीसराय में आज ही के दिन 1972 को उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही वीर थे, उनका सपना था कि वो सेना में भर्ती होंगे। आबिद खान ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लांस नायक आबिद खान ने करगिल युद्ध में टाइगर हिल की चोटी पर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत की नींद सुलाया था। इस युद्ध में भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को अपना निशाना बनाया। हालांकि अपनी वीरता का परिचय देते हुए कई भारतीय सैनिक शहीद हुए। शहीद सैनिकों में लांस नायक आबिद खान भी शामिल थे। उनके बलिदान पर आज पूरा देश गर्व करता है। 30 जून 1999 को आबिद खान का जत्था रवाना हुआ। दुश्मन की गोलीबारी के बीच कई सैनिक शहीद हो गए। एक गोली आबिद के पैर पे भी जा लगी। उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़कर एक साथ 32 फायर झोंक दिए। आबिद के इस ताबड़तोड़ हमले में 17 पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछ गईं और इसी बीच एक और गोली थी जो आबिद को आ लगी और ये वीर सपूत देश की रक्षा करते हुए 1 जुलाई 1999 को शहीद हो गया।
न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था।
आज लांस नायक आबिद खान की जयंती है।
Today is the death anniversary of Maria Tecla Artemisia Montessori, who was an Italian physician and educator best known for her philosophy of education and her writing on scientific pedagogy. At an early age, Montessori enrolled in classes at an all-boys technical school with hopes of becoming an engineer. She soon had a change of heart and began medical school at the Sapienza University of Rome, becoming one of the first women to attend medical school in Italy. She graduated with honors in 1896. Her educational methods is in use today in many public and private schools globally. And here I'm going to talk about Naveen ki kaise Montessori schools India mein shuru hue. An interest in Montessori had existed in India since 1913 when an Indian student attended the first international course in Rome, and students throughout the 1920s and 1930s had come back to India to start schools and promote Montessori education. The Montessori Society of India was formed in 1926 and Il Mattedo was translated into Gujarati and Hindi in 1927. By 1929, Indian poet Rabindranath Tagore had founded many Tagore Montessori schools in India, and Indian interest in Montessori education was strongly represented at the International Congress in 1929. Montessori herself had been personally associated with the Theosophical Society since 1899 when she became a member of the European section of the society, though her membership would eventually lapse. The Theosophical movement, motivated to educate India's poor, was drawn to Montessori education as one solution.
आज ही के दिन कश्मीरी कवि, अनुवादक और आलोचक अब्दुल रहमान राही का भी जन्म हुआ था। उन्हें उनके कविता संग्रह नवाज़-ए-सबा के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2004 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया और कश्मीर को अपनी कलम से बयां करने वाले कवि आलोचक अब्दुल रहमान राही को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया तो वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले कश्मीरी लेखक रहे।
एंड द मोस्ट अवेटेड personality that we are going to talk about is Shiv Kumar Batalvi, who was an Indian poet, writer and playwright of the Punjabi language. He was most known for his romantic poetry, noted for its heightened passion, pathos, separation and lover's agony. Due to that, he was also called Birhada Sultan. He became the youngest recipient of the Sahitya Akademi Award in 1967, given by the Sahitya Akademi, India's National Academy of Letters, for his epic verse play based on the ancient legend of Puran Bhagat Luna, now considered a masterpiece in modern Punjabi literature, which also created a new genre of modern Punjabi kissa.
पंजाबी भाषा के प्रख्यात कवि जन्म हुआ था 23 जुलाई 1936 को और बहुत ही खूबसूरत कविताएं उन्होंने लिखी हैं। एक ऐसे शायर और कवि जो बहुत छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा नाम कमा गया कि आज भी भारत के हर नौजवान के सीने में उनके शायरी उनकी कविताएं धड़कती हैं। एक इंटरव्यू का पीस है, उनकी आवाज में पहले सुनते हैं, फिर कुछ और बात करेंगे।
कविता जो है ना वो एक हादसे से पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो तब पैदा होती है। मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई वो उसमें सब कुछ था। सबसे पहली जो जिंदगी में वहाँ हिंदुस्तानी जिंदगी में बात है वो ये है कि वहाँ क्लासेस हैं, एक श्रेणियां हैं बटी हुई, उनमें कोई लोअर मिडिल क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, उनका दुखांत है। हर आदमी, हर बाप, हर माँ एक जुए की तरह ना उसको पढ़ाती है या पढ़ाते हैं और 10 साल के बाद वो सोचते हैं कि इसकी मुझे रिटर्न मिलेगी, वापसी मिलेगी। तो मेरे बाप भी तहसीलदार थे और उनका भी यही ख्याल था और मुझे नहीं पता कि मैं शायर काहे को हो गया।
Naveen, in 1947, when he was aged 11, his family moved to Batala, Gurdaspur district after partition of India, where his father continued his work as a patwari, as Shiv Kumar ji was recently, we heard him speak about that in his interview. He was a dreamer child, often vanishing for the duration of the day to be found lying under trees by the riverbank close to the mandir or Hindu temple outside the village, lost in a brown reverie. He appears to have been fascinated by local renditions of the Hindu epic Ramayana, as well as wandering minstrel singers, snake charmers and the like, which feature as metaphors in his poetry, giving it a uniquely rural flavor.
Shiv Kumar Batalvi, ek aisa kavi, ek aisa shayar, jiski nazmon ko कई लोगों ने अपनी आवाजें दी। नुसरत फतेह अली खां थे, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, हंसराज हंस, दीदार सिंह, बहुत सारे कवि और बहुत सारे ऐसे गायक थे। उनकी जो रचनाएं हैं, पीड़ा दा परागा, लाजवंती, आटे दिया चिड़िया, मैनू विदा करो, लेकिन एक गीत जो हम आपको आज सुनवाने जा रहे हैं शायद उसे हम कभी नहीं भूल सकते। उसके बोल हैं, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है।
एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। साध मुरादी सोनी फब्बत गुम है, गुम है, गुम है।
And today is the birthday of Gagan Narang, who is an Indian sports shooter supported by the Olympic Gold Quest. He won the bronze medal in the men's 10-meter air rifle event at the 2012 Summer Olympics in London with a final score of 701.1 on 30th July 2012. He was also a member of the prestigious Padma Award Committee 2023. Narang won a gold medal in the Afro-Asian Games 2003 in Hyderabad on 26th October 2003 in men's 10-meter air rifle competition. And in recognition of his achievements, Narang was conferred with the Padma Shri Award in 2011 and the prestigious Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for 2010. He was selected for that. Moving on to another Indian actress, Naveen, hum yahan baat kar rahe hain Asavri Joshi ki. She has acted in many Marathi language films and serials. She is known for her role in the Hindi TV series Office Office. She has acted as Lovely Kapoor in film Om Shanti. But here, let's listen in to this light-hearted, entertaining conversation of hers in the popular sitcom Office Office.
Achha, ye baat hai.
Bhai sahab, ye kisse baat kar rahi hain?
Pata nahi ji, ek ghanta ho gaya baat kar rahi hain.
Excuse me, madam.
Bhai sahab, main ek ghante se awaaz de raha hu, sunti nahi hai.
Achha, ye waise aapko kya lagta hai ki ye saadi kitne ki hogi?
कौन सी साड़ी?
ये नहीं है, कमीज है, साड़ी वो है।
पता नहीं जी,
मैं आपको बताता हूँ, ये 150 रुपए की साड़ी होगी और साथ में ब्लाउज फ्री है।
अच्छा जी,
और ये कान में जो बुंदे पहने हुए हैं ये असली है नकली है?
आज सवेर के आज के संस्करण में बस इतना ही। मैं नवीन और रेणु आपको बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। रॉबर्ट फॉस्ट ने कहा था, जीवन विकल्पों से भरा है और हमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए।
स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप इस समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।